नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षा कर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अन्य सांसदों ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों के साहस, वीरता और बलिदान को नमन करता है जिनकी कर्तव्य निष्ठा भारत की राष्ट्रीय भावना को निरंतर मार्गदर्शन देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी ये यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है। इस यात्रा में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस यात्रा से सहयोग को और मजबूत करने तथा शांति, सुरक्षा और विकास पर साझा दृष्टिकोण की पुष्टि होने की संभावना है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है। हैदरा के पास डिंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में 216वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड में जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इससे पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले फ्लाइट कैडेट्स को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ और सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ अधिकांश जिलों में आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। अब तक आए परिणाम एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर का संकेत दे रहे हैं। वहीं एनडीए ने कुछ क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराई है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। ये पर्यवेक्षक फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन तक इन राज्यों में उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वंशावली, माता पिता या रिश्तेदारों के नामों के आधार पर नए मतदाताओं की पहचान करते समय 2002 की मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। एसआईआर का पहला चरण समाप्त हो चुका है। निर्वाचन आयोग प्रस्तुत प्रपत्रों की निरंतर जांच और दोबारा छानबीन कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक जनगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इन मतदाताओं के नाम अस्थायी रूप से मसौदा सूची से हटा दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अब तक 92.41% मतदाता प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी की कोलकाता यात्रा के दौरान आज सॉल्टलेक स्टेडियम में प्रशंसकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर हंगामा किया। मेस्सी केवल 22 मिनट के लिए स्टेडियम में आए। इससे हजारों की संख्या में स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। मेस्सी के आगमन के तुरंत बाद ही स्टेडियम में अव्यवस्था फैल गई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक समय नक्सली हिंसा से प्रभावित बस्तर अब नक्सल मुक्त हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण ग्रेप 3 को लागू कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।